नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने सावित्री के बुक 5 कैंटो 3 ये हमने किया था, नहीं बुक 5 बुक ऑफ द योगा, बुक 7 कैंटो 3 कैंटो 4, और उसमें हम लोगों ने एंट्री इनटू द इनर कंट्रीज। अब ये इनर कंट्रीज क्या हैं? जब हम बाहर की चेतना से अंदर की ओर जाते हैं तो पहले हम एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसको शेरविन बताते हैं सबलिमिनल। सबलिमिनल यानी वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वो हम लोग एक बाहरी चेतना सीमित पर्सनालिटी जिसको हम पर्सनालिटी समझते हैं वो वास्तव में एक टेम्पररी कंस्ट्रक्ट है नेचर का, और उसमें हम कहते हैं मेरे विचार, मेरा जीवन, मेरी भावनाएं इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे हम उसके पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो कंटेनर है ये खुला हुआ है और पूरे विश्व से मिला हुआ है। सबलिमिनल बीइंग पूरी विश्व चेतना की ओर खुलता है, तो जब उसमें हम प्रवेश करते हैं तो ये तीन लेयर्स जिसकी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा, एक इनर फिजिकल है, एक इनर वाइटल है, एक इनर मेंटल है, और कई बार उसमें प्रवेश करके ये धोखा हो सकता है कि हमने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसमें जो अनुभव होते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक अनुभव होते हैं। वाइटल वर्ल्ड में हम लोगों ने सुना, और उसमें कई बार व्यक्ति उलझ सकता है। खासकर कौन लोग उलझते हैं? जो योग को किसी अहंकार के कारण फॉलो करते हैं कि हम योगी बन जाएंगे, हम बहुत बड़ा हमारा नाम हो जाएगा, हम खुद गुरुजी बन जाएंगे, स्वामी बन जाएंगे। आजकल स्वामी इज ऑल्सो काफ़ी मतलब हाई कैटेगरी रेटिंग है। तो इन सब चीज़ों में जब व्यक्ति जाता है तो उसमें उलझ सकता है, और अनुभव भी होते हैं। कुछ लोग अनुभवों के लिए योग के यात्रा में गुजरते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहा है, या कई बार माइंड के लेवल पर बहुत सारी इंस्पिरेशंस इत्यादि आ सकती हैं और व्यक्ति ये समझ सकता है कि वो वास्तव में बहुत ऊपर उठ गया है। खासकर सबसे डेंजरस क्या होता है जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा, बिलीव सिस्टम्स एंड फॉल्स एटीट्यूड्स। बिलीव सिस्टम क्या होता है? ये मान लेना कि हम अगर किसी एक विशेष आध्यात्मिक या धार्मिक समुदाय से जुड़ गए हैं तो चूंकि उनकी बुक में हमारा नाम लिख दिया गया है तो हम तर गए हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना, रजिस्टर योर नेम इन द रिकॉर्ड बुक ऑफ द एलीट। तो अब हम भाई इस अनुयाय के हैं, बस हम तो बहुत आगे पहुंच गए। तो ये सारी बाधाएं आती हैं आध्यात्मिक जीवन में, और हमको रुकना नहीं चाहिए। मेन चीज ये है कि नॉट टू स्टॉप एनीवेयर, ये सब चीजें आएंगी। तो लास्ट में हम देखते हैं कि सावित्री इन सबको पार करती हुई, जब सावित्री कहती हैं लास्ट में, जब मेंटल वर्ल्ड में उनको मिलता है एक बीइंग जो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, यही तो अल्टीमेट है, तो सावित्री कहती है नो आई मस्ट गो फर्दर फॉर आई सीक माई सोल। तो उस मेंटल वर्ल्ड का एक बीइंग उनको कहता है क्या इज देयर समबडी हु स्टिल कैन फाइंड द सोल। सच में सोल तो मानने की चीज है, कोई प्राप्त करने की चीज थोड़ी, वो तो एक फॉर्मुलस सी कोई चीज है, उसमें आप विश्वास रखिए कि मृत्यु के बाद निकल जाती है और चली जाती आ जाती है। सोल कोई प्राप्त करने की, उसके साथ आइडेंटिफाई करने की चीज तो नहीं है। तो कहता है, जो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत लाइंस हैं जब सावित्री इनर कंट्रीज में प्रवेश करती हैं। हाँ, एनदर विद मिस्टिक एंड अनसेटिस्फाइड आईज Who loved his slain belief and mourned its death. 500. अब प्रॉब्लम क्या होती है रिलीजियस चीजों के साथ कि अब उसमें आप या तो मानो, और जानने का प्रावधान नहीं है, आप मानो। अब कई बार ऐसा होता है कि आप एक बिलीफ को मान के चलते हैं लेकिन वो आपके जीवन में आप देखते हैं कि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस। माता जी एक जगह बताती हैं, एक बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस वो बताती हैं कि जब मैं क्रिएशन के बाहर जाके मैंने इस संसार को देखा और मनुष्य को देखा, जितने उसके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जितने भी ये रिलीजन वो रिलीजन, ये पथ वो पथ, माँ कहती देयर ऑल इल्यूशंस, रियलिटी किसी को नहीं पता है। तो माँ कहती जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत करुणा आई मेरे अंदर से मनुष्य को देख के। इट्स ए वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस कि कहाँ रुकना नहीं चाहिए मनुष्य को। तो हु लव्ड His slain belief and mourned its death, is there one left who seeks for a beyond? Can still the path be found? Open the gates. आप ये देखेंगे, कई आश्रमों में भी देखेंगे, शुरू में लोग आते हैं बड़े enthusiastic होते हैं ज्यादातर लोग, फिर धीरे धीरे जब उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत sincerity चाहिए, ये कहा ना ये मार्ग कठिन है को गुरुमुख जाना, लास्ट तक पहुंचना, वो एक अपने स्टीवन स्पीलबर्ग की पिक्चर है जिसमें वो लास्ट चीज होती है लीप ऑफ फेथ, जहां एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में ऐसा लगता है कि कूदना है लेकिन वो कूदना असंभव है, बट एक्चुअली वो आप कूद नहीं सकते हो, उसके नीचे ही यू हैव टू फाइंड द डोर, इट इज देयर हिडन। तो ये जो चीज होती है ना लास्ट एक्ट, ये लास्ट तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। पिक्चरों में दिखाया जाता है कई बार कोई मणि हासिल कर रहा है कुछ भी, दैट लास्ट पॉइंट, तो कई लोग गिव अप कर देते हैं, और जब वो गिव अप कर देते हैं तो वो एक प्रकार से सिनिक बन जाते हैं। वही लोग जिन्होंने यात्रा बड़े सुंदर ढंग से शुरू की थी सिनिक बन जाते हैं। सिनिक बन के उनकी भाषा कैसी होगी, अरे क्या ये सब नहीं ठीक है, वो सब ठीक है माँ शिरविंदो ने जो लिखा है, लेकिन रियल लाइफ ये है, इस तरह की वो भाषा बोलने लगेंगे। दूर रहिए उनसे, जस्ट स्टे अवे, डोंट ट्राई टू कन्वर्ट और चेंज देम, बट स्टे अवे, बिकॉज ये दे उनका अपना एक, उन्होंने उस पथ को जिस भी कारण से हुआ हो, ये मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, नहीं जा सके, हाफ गए, आफ्टर ऑल माउंट एवरेस्ट चढ़ना एक छलांग में सबके लिए संभव नहीं होता है, लेकिन आपके मन से ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जाना वहां पर है और ये संभव है, ये बात कभी विस्मृत नहीं होनी चाहिए। आप एकदम तलहटी में खड़े हो, आपने हजार बार उछले लेकिन नहीं जा पाए, बट स्टिल यू मस्ट नो कि वहां हमको जाना है और ये संभव है, और वो कैसे होगा कब होगा इसको हमको ग्रेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और जीवन बड़ा अद्भुत होता है, मैं तो बहुत बार देखता हूँ, अभी भी हमारे नर्सिंग होम में एक व्यक्ति है, उसको सीवियर ब्लड कैंसर अचानक डिटेक्ट हुआ, पूरे शरीर में फैल गया जिपमर में, डॉक्टर ने कहा कि इसकी एक हफ्ते से ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बाकी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ दवाई वाई के रास्ते में, बस अब नर्सिंग होम में मुझे ले आओ, तो रिक्वेस्ट करके मान गए, नर्सिंग होम में आए, सबको बता दिया गया अब एक हफ्ते का टाइम है। तो मुझसे रेगुलर मुलाकात होती, मैं उसको यही बताता हूँ कि तुम इस समय ना शरीर को नहीं देखो, केवल केवल माँ, केवल माँ। अब उसको बड़ा विश्वास है माँ के ऊपर, एक चीज है उसके जीवन में कि उसको एकदम पूरा विश्वास है माँ के ऊपर। अब 15 दिन हो गए हैं, इतना शांत है वो क्योर की बात नहीं हो रही यहाँ, इतनी सुंदर अवस्था में है कि मैंने उन लोगों को नहीं देखा इस सुंदर अवस्था में जिनको मामूली चोट होती है। He is so quiet and all the time, जब भी उसको मिलो वो बंद भी रहता है तो मुझसे माँ 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 निकल रहा है, और मैं देखता हूँ तो उस दादा बहुत स्माइल करके, तो मैं कभी बीमारी की बात ही नहीं होती है, आई सेड स्माइल बिकॉज मदर इज देयर एंड थिंक ओनली ऑफ मदर, शरीर में क्या हो रहा है नहीं उसको अभी नहीं, तुम केवल माँ पे ध्यान दो, एंड इट इज सच ए ब्यूटिफुल थिंग टू सी। तो ये हमें स्मरण रखना चाहिए, बात ये नहीं कि हम कहाँ पहुंचे, एंड ही इज ए यंग मैन, 50s में है, तो बात ये नहीं कि हम कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ रुकना नहीं चाहिए हमें मन के अंदर की ये अल्टीमेट है। जब ये भाव होता है जाना वहां है, कौन जाने कि हमारी जो एक अंतिम छलांग हो वो हनुमान जी की छलांग हो, याद है ना हनुमान जी तो भूल गए थे सब जामवंत उनको उठाते हैं कि उठिए उठिए महाराज आप सब कर सकते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं मैं तो साधारण वानर हूं। ये साधारण वानर ने बचपन में जाकर के सूर्य को फल समझ के खा रहे थे, तब वो ये स्मरण करना कि हम कितने भी साधारण अवस्था में हों हम सब भगवान के अंश हैं, और इसलिए हम सब के अंदर एक असाधारण तत्व है, और कौन जाने कि वो लास्ट मिनट ट्राई करते करते अचानक भगवान ने ही धक्का दे दिया, चल तू मेरे साथ तो वो कहता है इज देयर वन लेफ्ट हू सीक्स फॉर ए बियॉन्ड, कैन स्टिल द पाथ बी फाउंड, ओपन द गेट्स। तो सावित्री कुछ नहीं कहती है, अंदर में जाती है, तो वहां से वो देखती है कि उनके ही अब ये तीनों क्षेत्र पार हो गए, तो वो देखती है कि उनकी आत्मा से निकल के कुछ ज्योतिपुंज जा रहे हैं बाहर की ओर जा रहे हैं, वो कौन है, वो गॉड लाइक क्वालिटीज, गॉड्स। तो वो गॉड्स उनको सावित्री देखती है उनकी ल्यूमिनस आइस को, तो बहुत सुंदर इसमें एक लाइन है सबको स्मरण रखने योग्य है। सावित्री जब उनको देखती है तो एक क्षण को उनके अंदर ये भाव उठता है मैं भी इनकी तरह जाऊं और संसार की मदद करूं। आते हैं कई बार ये लोग पूछते हैं कि आश्रम में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई फ्री डिस्पेंसरी है, कोरोना का कोई स्पेशल वार्ड है, ये है वो है, नहीं हम लोग कोरोना के परमानेंट इलाज को ढूंढ रहे हैं भाई, क्योंकि एक कोरोना की बात नहीं है यहाँ मनुष्य की मर्त जीवन की बात है समझ सको तो समझो, नहीं समझो तो नहीं समझो। तो यहाँ पर सावित्री जब देखती हैं उस ल्यूमिनस कंपनी को, मतलब दे आर ऑल्सो नॉट, जो लोग जा करके ये सब काम कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से कंपैशन करुणा, लेकिन सावित्री जब देखती हैं उनको they carrying the light to suffering men. She knew that first she must discover her soul. Only who save themselves can others save. In contrary sense, she faced life's riddling truth. They carrying the light to suffering men, hurried with eager feet to the outer world. Her eyes were turned toward the eternal source. Help करते जाइए, जो भी करते, लेकिन आपको ये नहीं भ्रांति हो जानी चाहिए कि this is my work. Work is to unite more and more with the divine. अब उस यूनियन के द्वारा क्या होगा क्या नहीं होगा आपके थ्रू भगवान करेंगे, ये उनकी समस्या है. तो ये वो जब जाती हैं तो उनसे पूछती हैं कि हे देव ज्योतिपुंज, मुझे बताइए मैं अपनी आत्मा को ढूंढ रही हूं, कहां जाऊं कैसे जाऊं. तो जो उत्तर है बड़ा सुंदर है, वो कहते हैं कि फॉलो द वर्ल्ड्स वाइंडिंग हाईवे टू इट्स सोर्स. There in the silence few have ever reached, thou shalt see the fire burning on the bare stone and the deep cavern of thy secret soul. Ab dekhi Shri Aurobindo kitne, follow the world's winding highway to its source. Kaun sa path hai? Kisi bhi cheez ko chun lijiye, uske ant tak chale jaiye. End point uska kya hai? You will find the soul. Kyunki har cheez originally wahin se nikalti hai. कोई ऐसी गति नहीं है जिसको आप पकड़ के उसके एंड में नहीं जा सकते. लेकिन नेचुरली जितना स्थूल में जाएंगे उतना कठिन होगा. मन की गति से उसके एंड में जाना बहुत आसान है. इसीलिए लोग मन को चुनते हैं, एक आइडिया पिकअप कर लेते हैं, आइडिया को पिकअप करते हैं तो हमको पता नहीं होता इसका अर्थ क्या है. आइडिया ऑल इज इन द डिवाइन या द डिवाइन इज इन ऑल और यू नो ऑल इज द डिवाइन. आप किसी एक आइडिया को लेके उसमें आप रिफ्लेक्ट करते मेडिटेट करते अंत में यू विल गो अक्रॉस द आइडिया टू द ट्रुथ. आइडिया से इजी होता है. विल, एक ही विल. आप कुछ भी काम कर रहे हैं, द विल इज टू सर्व द डिवाइन, सर्व द डिवाइन, सर्व द डिवाइन, टू यूनाइट विद द डिवाइन. तो एक दिन आपकी जो ह्यूमन विल है वो डिवाइन विल का एक्सप्रेशन बनने लगती है. दिस व्हाट इज मेंट बाय टेकिंग एनीथिंग, हार्ट, इमोशंस. तो एक है कि हम केवल भगवान को प्यार करें, दूसरा है कि हम भगवान को ही सब में प्यार करें. ये भी दूसरा तरीका है. तो आप उससे जा रहे हैं तो ये जाते जाते एक टाइम आता है व्हेन यू क्रॉस बियॉन्ड द ह्यूमन लेयर एंड डिस्कवर द डिवाइन. ये चीज सेंसेस और देह के ऊपर भी लागू होती है, बट इज वेरी डिफिकल्ट. बट क्योंकि वो स्थूल केंद्र है ना, पर इट इज पॉसिबल. हठ योग का प्रिंसिपल तो यही है ना कि आपके देह में भी एक दिव्य तत्व है, उसको आप प्रयास करके बाहर निकाल सकते हैं. लेकिन यहां तो रूपांतरण की बात है. सो सावित्री जब ऐसा सुनती है तो मुड़ती हैं. Then Savitri, following the great winding road, came where it dwindled into a narrow path, trod only by rare wounded pilgrim feet. वहां जाएंगे तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपके तिलक त्रिपुंड जनेऊ माला क्या है. वहां आपके पांव पे नजर जाएगी, घाव है. है बहुत सुंदर. मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, The Wounded Healer. बाद में अब उसके बहुत सारे पार्ट्स आ गए, पर ओरिजिनल जो था इतना सुंदर था. जिस व्यक्ति ने जीवन में चोट नहीं कभी सही है ना, उसके पास कभी इलाज कराने नहीं चाहिए ना, उसको कभी अपना आइडियल बनाइए. ही कैनॉट लीड यू. शेरविन की एक एफोरिज्म है, ओनली ही हु हैज फेल्ड इज रेडी टू लीड. जिस व्यक्ति ने जीवन में फेल्योर देखी नहीं, ही कैनॉट बी योर लीडर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है. तो ये Wounded pilgrim feet, ये मार्ग ऐसे नहीं है कि स्टार्ट बहुत लोग करते हैं. हम लोग जैसे हम आश्रमाइट बने तो 50 लोगों का बैच था, तो अभी बात हम उस बैच में आश्रमाइट बने, 50 लोगों को साथ में बिठा करके एक प्रॉपर उसने फोटो वोटो खींचा, सब ये होता है. लेकिन जब तक आप वहां पहुंचेंगे तो अगल बगल देखेंगे कोई इधर उधर. तो ये रियलिटी है कि यू नो इट इज नॉट ईजी, पथ कठिन होता है. कौन तैयार है इस चोट खाने के लिए. ए फ्यू ब्राइट फॉर्म्स इमर्ज फ्रॉम अननोन डेप्थ्स एंड लुक्ड एट हर विद काम इमॉर्टल आइज. देयर वाज नो साउंड टू ब्रेक द ब्रूडिंग हश. वन फेल्ट द साइलेंट नियरनेस ऑफ द सोल. सोल के पास जैसे जैसे जाते हैं तो मन के अंदर एक स्थिरता शांति अपने आप आती है. पुशिंग इन दैट डायरेक्शन इज द बेस्ट वे इवन टू डिस्कवर द पीस, साइलेंस, क्वाइट्यूड. क्योंकि वहां उसका उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है। तो जब हम जाते हैं तो अब जब सबलिमिनल इनर बीइंग को पार करते हैं तो क्या हमको सीधा सोल मिल जाती है? नहीं। तो शेयरविंद बताते हैं, एक हमारा आउटर बीइंग है जिसको हम जानते हैं, एक हमारा इनर बीइंग है जिसकी बात हुई, एक हमारा ट्रू बीइंग है। ट्रू बीइंग में आपका ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, ट्रू मेंटल है। तो वहां पर जब हम जाते हैं तब हम डिस्कवर करते हैं एक बड़ी अद्भुत डिस्कवरी। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड स्पिरिचुअलिटी में हम लोग देखेंगे कि बात होती है प्रकृति की और पुरुष तत्व की। ऑर्डिनरी लाइफ में एक वैज्ञानिक केवल प्रकृति की बात करता है, वो कहता है कोई भी और रियलिटी नहीं है, इंडिविजुअल रियलिटी वो एक कंस्ट्रक्ट है जो ईगो है। लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ये बताता है, वन लाइन ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि नहीं, देर इज अ डीपर रियलिटी, ए डीपर सेल्फ। बुद्धिज्म में जाएंगे तो अनात्मवाद है कि नहीं, ईगो सेल्फ है, ईगो सेल्फ खत्म हो गया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट, वो मेटाफिजिकली सस्टेनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट दैट ए पार्ट। तो एक तरह के पथ होते हैं जिसमें कहा जाता है कि देर इज नथिंग लाइक अ ट्रू इंडिविजुअल सेल्फ इनसाइड यू। लेकिन सांख्य, गीता, श्री कृष्ण और श्री अरविंद ये इस बात को मान के चलते हैं, यानी ये उनका अनुभव है, वो इस बात को बताते हैं कि एक ट्रू इंडिविजुअल सेल्फ है हमारे अंदर, देर इज समथिंग कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल सोल। और इस चीज को कई और वेदांतीन, स्वामी विवेकानंद ने इसकी बात की है और कई ऐसे वेदांतीन जो इसको मानते हैं। और सच ये कि अगर ट्रू इंडिविजुअल सोल नहीं है तो योग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि साधना कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है, आप तो हो ही नहीं, तो मुक्ति कौन किसको चाहिए और मुक्त कौन होता है, ये सारे प्रश्न इसमें समस्या होती जुड़ जाते हैं। तो एक है नेचर जिसको हम सब जानते हैं या हम उसमें जीते हैं, जानते तो नहीं है, वो नेचर क्या है, नेचर प्रकृति, अनेकों अनेकों कृतियां जो गतिशील हैं, जगत्याम जगत, जो हर समय बदल रहा है, सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है, शाम को कुछ है। सुबह कहता है कि हम तो बस आपको हमने ये चीज प्रॉमिस कर दी, शाम को कहता है हमने कब आपसे प्रॉमिस किया, अगले दिन कहता है हम तो मिले ही नहीं आपसे। तो ये प्रकृति का स्वभाव है, आप उसको ये प्रकृति नित्य निरंतर बदलती है। अब क्या उसके अंदर कोई स्थायी तत्व है? दैट स्थायी तत्व इज द सोल। अब सोल के पास हम जाते हैं तब वहां हमें एक चीज जो सबसे पहले मिलती है, अब ट्रू नेचर। अब इस बात को बड़े सुंदर ढंग से स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेस में बताते हैं, श्री अरविंद वी सी की पुष्टि करते हैं कि ऑल ऑफ अस इन अवर ट्रू नेचर वी हैव अ डिवाइन नेचर। और वो स्वामी विवेकानंद इस कंटेक्स्ट में बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जहाँ जिस परिवेश में वो बोल रहे थे वहाँ ये ना कि फॉलन बीइंग, फॉलन बीइंग, फॉलन बीइंग, आपको हमेशा याद दिलाया जाता है यू आर ए फॉलन बीइंग, यू आर ए एनिमल, आपको धक्का दे दिया था एडम एंड ईव के समय से, आप लोग तो पाप की सजा भुगत रहे हो, पाप की संतान हो, ये सब हम लोग सुनते हैं। लेकिन इंडियन थॉट क्या कहता है, सनातन धर्म, कि हम सब के अंदर जो हमारी मूल प्रकृति है वो दिव्य है। लेकिन फिर दिव्य प्रकृति को क्या हुआ है, ये ढक गई है इग्नोरेंस से, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल इग्नोरेंस। फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोल इज ट्रुथ, सत्यवान, जो सत्य को धारण करता है। लेकिन यहां पर वो अचित अंधकार के क्षेत्र में है, तो जैसे आपकी आंखों के सामने एक पट्टी हो तो आंख होके भी हम नहीं देख पाते, तो उस प्रकार से इग्नोरेंस हमें ढक देता है। इग्नोरेंस क्या है, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने माइंड, लाइफ एंड बॉडी को और उसको स्व समझ लेते हैं। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं ढूंढने के लिए, इग्नोरेंस के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हमको अपनी त्रिविध मूल प्रकृति से हम मिलते हैं। अब ये त्रिविध मूल प्रकृति क्या है, अगर हम इसको ट्रेडिशनल योग के उसमें जाएं तो इट इज तम, रज, सत्व। ये तीन गुण जो है, त्रिगुणात्मक प्रकृति। लेकिन प्रकार की योगिक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें इन दोनों को अलग कर दिया गया है। त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रकृति है, उसमें आप इधर से ऊपर उठते हो, ऊपर से फिर नीचे आते हो, आप इसमें घिरा चक्कर लगाते रहते हो। लेकिन जो रियल चीज है वो विटनेस सोल, सोल तो केवल उसको देख रही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक प्रकार का द्वैतवाद है, यानी पुरुष है उसका ओरिजिन डिवाइन है, और जो प्रकृति है उसका ओरिजिन न जाने कहां से माया छल है, वो तो उसने तो सोल को पकड़ करके रखा है, बांध करके रखा है, तो इसको तो फ्री करना है आपको प्रकृति की चेन से, तभी आप उस तत्व को पा सकते हो। लेकिन श्री अरविंद उन दोनों की यूनिटी की बात करते हैं, और ये ओरिजिनल वेदांत है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भी आपकी सोल से निकली है, लेकिन वो अपने ओरिजिन में ट्रू है, और बाहर आकर के वो प्रदूषित हो जाती है और बदल जाती है। और इसी बात को जब श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म, तो वो इसी की बात करते हैं। स्वधर्म क्या है? हमारी मूल प्रकृति, उसके अनुसार जब हम जीते हैं तो हम केवल स्वधर्म के मार्ग से चलते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए, हम अल्टीमेटली वी कैन रियलाइज द मोक्ष। हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम वी कैन रियलाइज फ्रीडम। तो अब जब सावित्री अपने अंदर जाती हैं तो वहां इस त्रिगुणात्मक प्रकृति की मूल स्वरूप से, जो सोल की फोर्सेज हैं, ये आत्मा केवल एक साक्षी नहीं है, उसके अंदर शक्ति है, शक्तिपुंज है। ऐसा शक्तिपुंज है कि उसके पास आसानी से कोई असुर राक्षस नहीं जा सकता है, लेकिन वो जाने की चेष्टा करते। क्यों? क्योंकि उनको वो ही चाहिए। उनको पता है कि इस चीज के कारण मनुष्य स्पेशल है। इवन देवता भी जानते हैं कि इसके अंदर जो इसने शक्तिपुंज धारण किया हुआ है, इसमें तो सारे देवता हैं, सबके स्वरूप हैं, सबके अंश हैं, और ये हमारे पास नहीं है। तो देवता असुर दोनों ही मनुष्य के अंदर इनकार्नेट करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनको वो शक्तिपुंज का टच चाहिए। और मनुष्यों के पास वो है तो मनुष्य उसकी कदर नहीं करते हैं, ये मनुष्य का हम बाहर ढूंढते हैं इस देवता को, उस देवी को, लेकिन असल में ये सब हमारे अंदर है। तो अब इस चीज जब सावित्री अंदर जाती है, तो पहले हमारा हमारी मूल प्रकृति से साक्षात्कार होता है। और अब हम देखते हैं कि ये सोल ने अपने अंदर से ये जो तीन शक्तियां प्रकट की हैं, कैसे ये प्रकट की हैं, जिससे हम संसार के साथ सारा संबंध जोड़ सकें। अब संसार की समस्या क्या होती है? एक तो सबसे बड़ी इतनी कठिनाई है, चैलेंजेस हैं। लोग कहते हैं कि देखो भगवान ने तो हमको ऐसे ही छोड़ दिया। भगवान ने ऐसे नहीं छोड़ा, हमारी ही आत्मा में वो शक्ति है जो सब कुछ जर्नी को एंड्योर कर सकता है। वो सब अंदर में है, अगर हम इसको टच कर लें तो हम पूरे जीवन वी कैन एंड्योर एवरीथिंग, लेकिन एक क्षण के लिए हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव नहीं आएगा। तो पहले, सबसे पहले सावित्री उनसे मिलती हैं, मैडोना ऑफ सफरिंग, मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन। वो क्या करती हैं? सब पीड़ा दुख को वहन करती हैं, लेकिन वहन करके वो ये नहीं कहती हैं भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं सहन करूंगी, यही मुझे काम दिया गया है। आई विल एंड्योर टिल वन डे यू विल कम एंड चेंज मी। अब यही मूल जो पावर है वो पीस की, एंड्योरेंस की। लेकिन वही जब मनुष्य के ईगो के क्षेत्र में उतरती है एंड्योरेंस की शक्ति, तो वो असुर तत्व के अंदर रूपांतर चेंज हो जाती है। तो एक देव प्रकृति है अंदर में, वो जब ईगो के क्षेत्र में आती है तो वो क्या बन जाती है? पावर ऑफ एंड्योरेंस। भगवान ने तो मुझे बनाया ही है इसीलिए, कष्ट देने के लिए। दुनिया का, अब इसके पीछे जो भाव होता है, कहते नहीं लोग ऐसे, कभी कभी मैं ऐसे पूछता हूँ जब लोग कहते हैं मुझे जीवन में कष्ट है, कष्ट है, कष्ट है, तो मैं कहता हूँ आप बड़े स्पेशल हो गए व्यक्ति। क्यों? भगवान ने चुना आपको खाली कष्ट देने के लिए। मस्ट बी, ये जब ईगो के क्षेत्र में आती है तो उसके अंदर केवल निरंतर कंप्लेंट कि भगवान को तो इसी में खुशी आती है, मेरे ही कर्मों का सजा। ये भी वो मतलब ओपनली कह नहीं सकते ना, रिवोल्ट। कहते हैं जब मैं भगवान से कहता हूँ तो कहते हैं कि तुम्हारे कर्म हैं इसलिए तुम सफर कर रहे हो। तो वो चेंज हो जाती है इन इट्स egoistic स्टेट। इसका जो हमें दी गई है ये शक्ति, आत्मबल, ये हमें जीवन की नाना प्रकार के चैलेंजेस को झेलने के लिए दी गई है। लेकिन वो चेंज हो जाती है इन एवर कंप्लेनिंग मैन ऑफ सॉरोस। मैन ऑफ सॉरोस क्या कहता है? जीवन तो बना ही दुख के लिए है, और जिसने बनाया है उसको हमें दुख देने में बड़ा मजा आता है, ये असुर तत्व कहता है। तो आप पूछो भैया उसको क्या मजा आ रहा होगा? नहीं, वो इसलिए भगवान दुख देता है ताकि हम उनकी पूजा कर सके। ऐसा भगवान कोई पूजा की करेगा जो कष्ट दे रहा है ताकि आप उसको पूजा कर सको? मतलब ऐसा भगवान तो सच में वी हैव पेंटेड मॉन्स्टर इन द नेम ऑफ गॉड। तो यहां पे दोनों का वर्णन होता है। पहले वो अपने इस प्रकृति से मिलती हैं जिसको मेटीरियल नेचर, जिसके अंदर ये पावर है, तमोगुणी प्रकृति। तमस के अंदर ये ट्रेमेंडस पावर होती है, कैपेसिटी चीजों को एब्जॉर्ब करने की। आपने देखा ये तमस, वैसे तो तमस इसीलिए उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन भी होता है, पर तमस के अंदर देखिए आपको बहुत पीड़ा हुई है, सारे दिन चलता रहा दिमाग में कुछ कुछ, लास्ट में आप क्या करते हैं? तमस की गोद में सो जाते हैं। 99% जब आप सुबह उठते हैं तो वो चली जाती बैकग्राउंड में, ये तमोगुण का प्रभाव है, हर चीज को अपने अंदर सोख लेती है। आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को भी सोख लेगी, प्रॉब्लम ही है. आप बहुत अच्छे उसमें, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू वुड हैव इट्स गॉन समवेयर इन द बैकग्राउंड. तो तमोगुण के अंदर ये कैपेसिटी होती है. एक इसका एक प्रैक्टिकल वो भी है, आपने ये देखा होगा कि कई लोग पुराने समय में फर्श पे सोते थे, है ना. अच्छा, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि उनको समस्याएं कम होती थी, नींद अनिद्रा की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती थी. आई हैव ग्रोन अप इन दैट, इन साइकियाट्रिस्ट आई कैन टेल यू दैट. कारण क्या है, पृथ्वी के ऊपर तमोगुण का बहुत अधिक प्रभाव है. और ये हम लोग बचपन में भी कि आप इस पर कुछ बिछा लो नहीं तो तमोगुण ना बहुत स्ट्रांग होता है. लेकिन जब हम लोगों ने रजोगुण के बिस्तर पे सोना शुरू किया तो क्या शुरू हो गया, रजोगुण प्रधान है बिस्तर, तो आपके दिमाग में वो सारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ शुरू हो गया अनिद्रा. तीसरा बिस्तर होता है सत्वगुण का बिस्तर, वो ठीक होगा, मतलब ना एकदम कठोर होगा ना ऐसा वाला डनलप पिलो होगा, और अच्छे म्यूजिक के साथ. सो दिस इज द इवन हाउ वी लाई ऑन द फ्लोर. इसका सब जगह तमोस गुण रजोगुण सत्वगुण सब जगह हर चीज में है, भोजन में है, संबंधों में है, जप में है, तप में है, दान में है, यज्ञ में है, सब चीज में है, प्रयास में है. तो यहां पर हम लोग केवल उसके ट्रुथ को पढ़ रहे हैं. तो जब वो मिलती हैं सावित्री, मैडोना ऑफ सफरिंग, मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन, तो कहती हैं, आई हैव बोर्न द काम इन डिफरेंस ऑफ हेवन, येट हैव आई क्राइड नॉट अगेंस्ट हिज विल, येट हैव आई नॉट accused हिज कॉस्मिक लॉ, बिकॉज शी इज अ गॉडेस, शी इज अ पावर ऑफ गॉड. तो जानती हैं कि एक विजडम है जो मुझे दी नहीं गई है समझने के लिए, लेकिन आई एक्सेप्ट इट कि भगवान किस लिए कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, बट आई एम एंड्योरिंग इट. Only to change this great hard world of pain, a patient prayer has risen from my breast, a pallid resignation lights my brow. Within me a blind faith and mercy dwell, I carry the fire that never can be quenched. I am the hope that looks towards my God who never came to me till now. His voice I hear that ever says I come, I know that one day he shall come at last. अब जो लोग इनसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं ना मैडोना ऑफ सफरिंग से, उनके अंदर ये करुणा, मर्सी, दया के देवता, दया की देवी बन जाते हैं. और कहीं भी वो पीड़ा देखते हैं तो वो चाहते हैं कि कैसे दया दी जाए, होप देते हैं वो संसार को. वो इस तरह नहीं कि देखो तुम्हें ये हो गया अब इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, भगवान ने भी देखो तुम्हारे साथ, ये भी होते ना काजी मुल्ला, भगवान ने तुमको मारने के लिए किया है, मतलब. तो ये लोग जो होते हैं, जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो सेवा, और सेवा के द्वारा होप देते हैं हर किसी को. तो ये एक स्तर है. लेकिन उसका जो अपोजिट ईको, ईको कहाँ होती है, हमारे नेचर के अंदर एक जो ईगो से जुड़ा हुआ एबिस है, एक द्वार खुलता है हमारे सोल की तरफ, एक द्वार खुलता है एबिस की तरफ. तो ये एबिस की तरफ खुलने वाला द्वार है. तो जब ईगो में हम इसी, यही पावर जब ईगो के क्षेत्र में आती है तो ईगो उससे ही सपोर्टेड होता है, बिकॉज पावर तो वही है. तो उसको पकड़ करके एक और तो एंड्योर कर रहा है, लेकिन साथ में कहता है, आई एम द मैन ऑफ सॉरोज, आई एम ही हु इज नेल्ड ऑन द वाइट क्रॉस ऑफ द यूनिवर्स टू एंजॉय माई एग्नी, गॉड बिल्ट द अर्थ. भगवान ने इसलिए संसार बनाया कि मेरी पीड़ा को एंजॉय करे, कैसा भगवान होगा. और उसकी उसकी जो मैडोना ऑफ सफरिंग से जुड़े हैं, वो जब मर्सी, प्रेम, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे, उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं. लेकिन ये जो मैन ऑफ सॉरोज है, आई हैव लव्ड फॉर माइन नॉट फॉर द बिलव्ड सेक, आई हैव लिव्ड फॉर माई सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स लाइव्स, ईच इन हिम सेल्फ इज सोल बाई नेचर्स लॉ, सो गॉड हैज मेड हिज हार्श एंड ड्रेडफुल वर्ल्ड, सो हैज ही बिल्ट द पेटी हार्ट ऑफ मैन. Only by suffering can I excel. ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बिना पीड़ा के प्रोग्रेस नहीं होती, please stay away. ऐसा नहीं चाहते हैं भगवान, उनकी ओरिजिनल प्लानिंग में ये बिल्कुल नहीं है. आती है तो यूज इट एज ए पैसेज, बट ये नहीं मुझे पीड़ा दो, कष्ट दो जिससे मैं प्रोग्रेस करूं. ओनली ए टाइटन कैन से दैट, मुझे पीड़ा चाहिए, कष्ट चाहिए. हाँ, दूसरों का कष्ट आप ले रहे हैं तो शिव है, वो एक अलग चीज है. आप अपने, मुझे कष्ट चाहिए जिससे मैं प्रोग्रेस करूं, नो. पर हाँ शिवत्व है तो आप धारण कीजिए अपने अंदर, सारी सृष्टि का विष अपने अंदर ले सकते हैं, लेकिन पीड़ा का मार्ग माता जी नहीं कहती, इट इज नॉट ई डार्क पैसेज ऑफ द सोल, माँ सनलिट पाथ की बात करती हैं। आई एम द डूअर ऑफ डेमोनिक डीड्स, ये भी देखिए तमोगुणी प्रकृति के अंदर तमो तामसिक अहंकार होता है। तामसिक अहंकार क्या कहता है, मैं बहुत ही खराब हूं, वर्थलेस हूं, जाके संसार में दिया लेके भी ढूंढोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखेगा, ये तमोगुणी अहंकार है, उसमें भी आप फर्स्ट रहना चाहते हो, हाँ संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं दिखेगा, आई वॉज मेड फॉर ईविल, ईविल इज माई लॉट, मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे बनाया ऐसा, मुझे तो पाप वृत्ति देके भेजा है, पाप करना मेरा चरित्र है, मैं क्या कर सकता हूं, ईविल आई मस्ट बी एंड बाई ईविल लिव, वॉट नेचर मेड मी दैट आई मस्ट रिमेन, आई सफर एंड टॉयल एंड वीप, आई मोन एंड हेट। सावित्री दोनों की बातें सुनती हैं, जो एबिस में है उसको इग्नोर करती हैं, डोंट लिसन टू दैट, लिसन टू दिस, लेकिन मैडोना ऑफ सफरिंग और मदर को ऑफ ग्रीफ डिवाइन को वो कहती हैं जाते जाते कि मैं समझ सकती हूं तुम्हारे अंदर होप तुम लाती हो लेकिन सेव करने की स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक दिन मैं आऊंगी और तुम्हें स्ट्रेंथ भी दूंगी जिससे तुम बचा भी सको। तो अब वो जाती हैं जब नेक्स्ट लेवल पे, तो वहां रजोगुणी प्रकृति के पीछे जो मूल रूप में है, तो वहां पे द पावर द स्ट्रेंथ टू सेव, और उसका ऑपोजिट एबिस में। तो हम दोनों को थोड़ा पढ़ते चलेंगे। सो शी मीट्स द मदर ऑफ माइट, बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है, अब समय के उसके कारण, बट वी हैव डन इट एल्सवेयर, बड़ा पावरफुल है, हर एक मैडोना का शेरविंद कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, एकदम दर्शन करा देते हैं हमको माँ का। आज रामनवमी है, दुर्गा का एक आवाहन भी है, तो वो भी हम लोग पढ़ते चलें, देखो ऑटोमेटिकली ये सब होता है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे होता है, एक हारमोनी ऑफ सीक्वेंस। अब नेक्स्ट लेवल पर जब वो मिलती हैं तो किनसे मिलती हैं, उन्हीं के नेचर के अंदर से मैडोना ऑफ माइट वो है दुर्गा, काली इस रूप में प्रकट होती हैं, आई एम दुर्गा। अब जो उनसे आइडेंटिफाई होते हैं तो उनके जीवन का क्या लक्ष्य होता है, वो केवल होप और सफरिंग मर्सी नहीं, वो युद्ध लड़ते हैं, वो युद्ध लड़के प्रगति करते हैं, उनका स्वधर्म है क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय और वैश्य धर्म, सो दे इट्स नॉट बाय सर्विस बट बाय फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, फाइटिंग अगेंस्ट ईविल, जहां वो देखते हैं कि ईविल है वो वहां पहुंच जाते हैं अपनी तलवार निकाल करके तो वो क्षत्रिय धर्म है। और आई एम दुर्गा गॉडेस ऑफ द प्राउड एंड स्ट्रांग एंड लक्ष्मी क्वीन ऑफ द फेयर एंड फॉर्चुनेट, आई वेयर द फेस ऑफ काली व्हेन आई किल, आई ट्रैम्पल द कॉर्पसेस ऑफ द डेमन होर्ड्स। मुझे बहुत आनंद आता है अगर मेरे सामने राक्षस असुर खड़े हो जाए तो उनको मारने में बड़ा आनंद आता है ये जीवन क्या जीवन है जिसमें चैलेंजेस ना हो। तो ऐसे लोग होते हैं जो क्षत्रिय भाव से, उनके लिए ये तो तिलक चंदन होता है। बड़ी सुंदर स्टोरी, जब विराट युद्ध होता है तो विराट पुत्र जो है उत्तर वो चले जाते हैं, इनके ये तो बहुत उनको चढ़ा देते हैं, उस समय बने अर्जुन बने हुए हैं ब्रहनल्ला, चलो 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 युद्ध लड़ेंगे, वो कहता है हम युद्ध, अरे चलो मैं सारथी हूं ना तुम्हारा, चले जाते हैं। जब वो सामने देखते हैं भीष्म द्रोण सबको कहते हैं कहां ले आए हो भागो तो अर्जुन एनकरेजेस हिम, तो अर्जुन वेट्स टिल अ एरो टचेस एंड विजेस पास्ट एंड ही हैज ब्लड ऑन हिज यू नो, तब वो कहता है नहीं नहीं अब मैं नहीं लड़ सकता हूं। तब अर्जुन कहते हैं कि आज आप युवा हो गए, बड़ी पावरफुल है वो, और तब अर्जुन कहते हैं नाउ आई विल ब्रिंग माई गांडीव एंड देन ही फाइट्स द वार। उत्तर इतना प्रभावित हो जाता है कि ये वो कहते हैं नाउ यू डोंट वरी, पर आज मैं तो लाया था तुम्हें कि यू बिकम यंग, बिना युद्ध लड़े बिना घाव सहे तुम यंग कैसे हो गए तुम ये तो मैं तुम्हें तिलक चंदन कराने लाया था। दिस इज द वे ऑफ द क्षत्रिय, और क्षत्रिय बहुत कितनी स्टोरीज हैं इसकी, तो मेरे पास रियल वार की स्टोरीज जहां पे क्षत्रिय को मजा ही इसमें आता है। वो टाइगर हिल की वो फेमस जो फ्रेज हुई थी फेमस, कैप्टन विक्रम बत्रा ये दिल मांगे मोर, अब वो उसको मजा ही नहीं आ रहा है कि वो तो कहता है कि मैं खदेड़ना चाहता हूं एकदम लास्ट डेन तक उतर करके मारना चाहता हूं। इतना भय हो गया था पाकिस्तान की आर्मी में कि वो बाकी छोड़ के केवल उसको टारगेट कर रहे थे, कि ये आदमी को खत्म करना है. एंड अल्टीमेटली डाइड ए वॉरियर्स हीरोज डेथ पॉसिबली थ्रू एनी वे समबडी मस्ट हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स कि एग्जैक्ट फॉर द बॉम्ब टू फॉल ऑन हिज यू नो रिप थ्रू हिज नेक इज इम्पॉसिबल. तो ये इस प्रकार की वो ढूंढते हैं. तो यहां पर उनका वर्णन है, आई एम चार्ज बाई गॉड टू डू हिज माइटी वर्क, अनकेयरिंग आई सर्व हिज विल हु सेंट मी फोर्थ, रेकलेस ऑफ पेरिल एंड अर्थली कॉन्सिक्वेंस. एक योद्धा से आप बोलोगे देखो ये हो सकता है वो हो सकता है, योद्धा कहेंगे मेरा काम है युद्ध लड़ना, आई विल गो एंड फाइट द वार. और शेरविंद का एक बहुत सुंदर पावरफुल, जब अर्जुन कहते हैं कि कहाँ ले आए हो केशव मुझे, इनकी अगेंस्ट उनकी अगेंस्ट नहीं, मैं संन्यास लेता हूँ, गांधी जी ने कहा था, बुद्ध देव ने कहा था, क्राइस्ट ने भी कहा था, आप सबको झुठला रहे हो. तो कृष्ण जब उनको जो आदेश देते हैं उसको शेरविंद ने अपनी वाणी में कहा है और इतना पावरफुल है कि नो दाई सेल्फ, आइदर फाइट बिकॉज फाइट फॉर द जस्ट फॉर द ट्रू, आइदर फॉल नोबली और कॉनकर माइटिली. क्षत्रिय के सामने दो ही विकल्प होते हैं, युद्ध लड़ता हुआ वो वीर गति को प्राप्त हो या कॉनकर माइटिली. क्षत्रिय के सामने तीसरा विकल्प नहीं होता है कि अपनी पीठ दिखा के. सो दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ ए क्षत्रिय. आई रीजन नॉट ऑफ वर्च्यू एंड ऑफ सिन, ये गलत है सही है ये क्षत्रिय नहीं कहता है. जब भीमसेन से पूछा किसी ने आपने 100 बेटे मार दिए गांधारी के, एक तो छोड़ देना चाहिए था, भीम का जवाब 200 होते तो मैं 200 को मार डालता. क्षत्रिय का जवाब होता है आई डोंट केयर कि ये तुम बुक में लिखोगे कि ये अच्छा किया बुरा किया, लेकिन मेरे लिए व्हेन आई एम फेस टू फेस विद ईविल आई डिस्ट्रॉय ईविल. एक ने भी उस समय आवाज नहीं उठाई, इतना काफी है मेरे लिए. हिज लॉजिक इज वेरी सिंपल, तुम में से किसी एक ने आवाज नहीं उठाई सो यू आर अब मेरे कोप का भाजन हो. तो वर्च्यू एंड सिन के हिसाब से क्षत्रिय नहीं सोचता है. बट डू द डीड ही हैज पुट इनटू माय हार्ट, आई फियर नॉट फॉर द एंग्री फ्राउन ऑफ हेवन. देवता कहेंगे कि अरे इतने लोगों को मारा, तुझे थोड़े समय के लिए हेल में जाना होगा. क्षत्रिय इज डजंट माइंड. आई फ्लिंच नॉट फ्रॉम द रेड असॉल्ट ऑफ हेल, आई क्रश द ऑपोजिशन ऑफ द गॉड्स. देवता भी सामने खड़े हो जाते हैं तो क्षत्रिय नहीं रुकता. यही अर्जुन को पशुपत अस्त्र देने के पहले यही तो टेस्ट लेते हैं. शिव जी आ जाते हैं सामने और वो युद्ध होता है. एक बार श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का युद्ध होता है क्योंकि वचन दे दिया है. तो अर्जुन सेज कि मैंने वचन दिया है, आप मेरे परम सखा हो, लेकिन क्षत्रिय वचन के ऊपर खड़ा रहता है. तो यहां पर इसका वो है, आई क्रश द ऑपोजिशन ऑफ द गॉड्स. देवता भी सामने खड़े हो जाएंगे. ट्रेड डाउन ए मिलियन गॉब्लिन ऑब्स्टिकल्स, आई गाइड मैन टू द पाथ ऑफ द डिवाइन एंड गार्ड हिम फ्रॉम द रेड वुल्फ एंड द स्नेक. जिससे भयभीत होकर जो लोग चले जाएं वो वहां पर जाता है रेड वुल्फ एंड द स्नेक. आई सेट इन हिज मॉर्टल हैंड माई हेवनली सोर्ड, जिसको माँ भवानी अपनी शक्ति पकड़ा देती हैं. अर्जुन श्री राम शिवाजी राजे माँ भवानी की शक्ति तलवार पकड़ा देती हैं. एंड पुट ऑन हिम द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ द गॉड्स, आई ब्रेक द इग्नोरेंट प्राइड ऑफ ह्यूमन माइंड एंड लीड द थॉट टू द वाइडनेस ऑफ द ट्रूथ. तो इस प्रकार से वो जाती है, कहती मेरे पास ये तो है कि मैं असुरों को परास्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं संसार में फिर भी एक नया प्रकाश नहीं ला सकती हूँ, चेंज नहीं कर सकती हूँ. सो दुर्गा हमेशा शी पुशेस बैक द ऑपोजिशन. बाद में क्या करते हैं वो सारे असुर राक्षस, अपने लोक में जाके छुप जाते हैं, कहते हैं त्राही माम मा 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 मा, फिर उसके बाद जाओ तुम यहां मत आना, ठीक है, फिर प्लॉट करके फिर आते हैं. तो ये चलता रहता है. तो साविद और उसी का जो वही शक्ति जब मनुष्य के ईगो में आ जाती है तो वो क्या कहता है, मैं योद्धा हूं मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं उसको हराऊंगा, मैं यहां का डॉन हूं, मेरे सामने किसकी चलेगी. सेम थिंग जब ईगो के क्षेत्र में आती है, जब व्यक्ति सत्य के लिए नहीं अपने अहंकार के लिए युद्ध लड़ता है तो वही चीज आसुरिक हो जाती है. कर्ण और अर्जुन में क्या भेद है, अर्जुन जब युद्ध लड़ता है तो उसके अंदर एथिकल डिलेमा आते हैं कि ये करने से लार्जर इशू क्या है, और श्री कृष्ण रिजॉल्व करते हैं, कहते हैं कि डोंट वरी देयर इज ए ग्रेटर ट्रूथ, तो उसके लिए युद्ध लड़, धर्म के लिए. कर्ण क्या कहता है, वो भी जानता है कि ये विधर्मी है, लेकिन कर्ण की समस्या क्या है, लेकिन मेरा तो भला किया है, उसने राज्य दिया है तो मैं इसकी तरफ से लड़ूंगा. दिस इज द डिफरेंस. वही शक्ति है, लेकिन अर्जुन के अंदर वो दिव्यत्व को धारण किए हुए हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि विभूतियों में मैं अर्जुन हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, और वही शक्ति कर्ण के अंदर एक स्वार्थ, ही हैज गिवन मी, मेरा मित्र है, धर्म बाद में देखेंगे, उसने मुझे राज्य दिया है, इसके साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो अब वो असुर भी अपनी अपनी चीजें कहता है कि मैंने ये कॉन्कर कर लिया है, वो कॉन्कर कर लिया है, आकाश बांध दिया है, पाताल को खोद दिया है, वहां की शक्तियां भी ले आई है, इंटरनेट भी मैं ले आया हूं, मैं ओमनीपोटेंट हूं, ओमनीसिएंट हूं। यही है देखो कि मैंने पशु को भी अपना दास बना लिया है। I have taught my kind to serve and to obey. I have used the mystery of the cosmic waves to see far distance and to hear far words. I have conquered space and knitted close all earth. Soon I shall know the secrets of the mind. I play with knowledge and with ignorance. तो सावित्री फिर से सुनती हैं, No wish I harbor unfulfilled shall die. Omnipotence and omniscience shall be mine. सावित्री सुनती हैं, अनदेखा करती हैं, तू कहता रहे अपनी जगह। मैडोना ऑफ माइट को कहती हैं, आई नो यू हैव द पावर टू सेव, बट यू डोंट इवन येट हैव द लाइट दैट कैन चेंज। तो एक दिन मैं आऊंगी, तुम्हें उस परम प्रकाश से भूषित करूंगी, मंडित करूंगी। अब फर्दर वो जब जाती हैं तो फिर वो मैडोना ऑफ लाइट से मिलती हैं। वो कौन है? वो सत्वगुणी प्रकृति। अब इसको लोग जो चातुर्वर्ण से भी कंपेयर करते हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दे आर द फोर कॉस्मिक पावर्स, लेकिन इंडिविजुअल के अंदर ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में प्रकट होती हैं। और ये सब जानते हैं कि ये जो दो हैं, महाकाली एंड महालक्ष्मी, दे आर वेरी क्लोजली एलीड एंड दे आर कनेक्टेड। महालक्ष्मी का प्रेम जो है, दोनों के अंदर इंटेंस प्रेम है, लेकिन महालक्ष्मी का प्रेम मानवीय है, और महाकाली का जो प्रेम है वो उसमें एक दिव्यता है, इट डजंट अलाउ एनी ऑब्स्टेकल। महालक्ष्मी का प्रेम अलग तरह का है, वो एक उसमें एक ह्यूमन टच है, एंड बोथ कम इन द सेम वैश्य कैटेगरी। लेकिन यहां पर हम लोग त्रिगुणात्मक प्रकृति के हिसाब से चले तो ज्यादा उचित है। निकलती वो इन्हीं का जो कॉस्मिक ओरिजिन है वहां पर है। तो पहले जब वो मिलती हैं, सो मैडोना ऑफ लाइट उनको कहती हैं, सब कहती हैं, सावित्री आई एम योर सीक्रेट सोल, यानी कहीं पर भी हम रुक सकते हैं इस यात्रा में। I am charity with the kindly hands that bless. I am silence mid the noisy tramp of life. I am knowledge pouring on her cosmic map. And light. I am the power that labors towards the best. और फिर वो मनुष्य के बारे में बताती हैं, He is the good for which men fight and die. भगवान. He is the war of right with right and wrong. He is freedom. Rising deathless from her pyre. He is the prophet's voice, the sight of the seer. जिसके ऊपर ये जो स्टेशन ले लेते हैं वो सीयर और सेज का माइंड हो जाता है। प्रॉफिट वॉइस, ओरिकल्स, वाणी के अंदर कहते हैं ना हम सरस्वती विद्वान हो गई, एक्चुअली इट्स महेश्वरी विद्वान हो गई। तो उन लोगों को वो मैडोना ऑफ लाइट के वो विभूति, अब ये तीनों लेवल पे हम देखते हैं कि वो विभूति बन जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली। और इस प्रकार से वो लास्ट में बताती हैं कि आई शैल सेव अर्थ इफ अर्थ कंसेंट्स टू बी सेव्ड, देन लव शैल एट लास्ट अनवुंडेड ट्रेथ अर्थ सॉइल। ज्ञान के आधार पर जब प्रेम उतरता है ज्ञान के बाद, तो वो एक सॉलिड आधार भूमि पर उतरता है। मैंस माइंड शैल एडमिट द सॉवरेनिटी ऑफ ट्रूथ एंड बॉडी बेयर द इमेंस डिसेंट ऑफ गॉड। फिर वही वो दूसरा जो एबिस में बैठा हुआ है, उसको ज्ञान उसको जब मिलता है तो एबिस वाला बीइंग क्या कहता है, मैं हूं ज्ञानवान, देवी देवता, वहां से ज्ञान, इंस्पिरेशन, ये सब चीजें, तो आई एम द वन, आप नॉलेजेबल है, हाँ प्रमाण है मेरे पास, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके देखो मेरे कार्ड पर लिखा हुआ है। और लोग बड़े प्रभावित होते हैं इससे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि उनको वो एक फॉर्मेट में चले गए। सब लोग नहीं होते ऐसे, माँ कहती जो इसके बाद जाते हैं, फेथ जिनके अंदर डेवलप होता है, दैट इज ट्रेमेंडस। पर पढ़े लिखे लोगों की समस्या ये होती है कि वो फॉर्मेट में बंद हो जाते हैं, वो उसके पार देख नहीं पाते। आई रिमेम्बर एक बार हमारी साइकोलॉजी के कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहां सब अपने अपने कैंप को लेके, एक साइको एनालिस्ट हर चीज को वो उसी हिसाब से समझने की चेष्टा करना, तो साइको एनालिस्ट जब उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा आप एक क्षण के लिए इस आप फ्रेम से बाहर निकल के देखने की चेष्टा करें, ठीक है आपने इसका स्पेशलाइज किया है तो आपका वो फॉर्मेट हो गया है, लेकिन नॉलेज तो बहुत विशाल है ना, ये तो एडमिट कर सकते हो कि नॉलेज इज इन्फिनिट, उसको आप किसी फॉर्मेट में, किसी सेक्ट में, किसी भी उसमें, बुक में, स्क्रिप्चर में आप नहीं सीमित कर सकते हो। ज्ञान का तो ये प्रारंभ है कि ये विनम्रता कि इट इज बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस। तो फिर वो लेकिन जो एबिस में जो असुर है वो बताता है उनको, वो कहता है कि देखो मैं ज्ञानी हूं, क्यों मैं ज्ञानी हूं, ये सब जो बात करते हैं गॉड गॉडेसेस इंस्पिरेशन इंट्यूशन, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, मैं मेरे को देखो मैं कितना ज्ञानी हूं, कैसे मुझे सारे सीक्रेट्स पता है, देवताओं की तरह मैंने दुनिया बना ली है, आपने तो कल्पना में बनाया कि वो इंद्र ताली बजाते हैं और देखो शुरू हो जाता है एक नृत्य, मैंने भी वो डिवाइस कर लिया है कि मैं ताली भी नहीं चाहिए, पद चाप से मेरा टेलीविजन शुरू हो जाता है। अब ऐसी चीजें तो आ गई है ना, आप स्टेप किया, मेरे लिए तो बड़ा अजूबा था जब पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि स्टेप किया तो लाइट जल गई, तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, हुआ नहीं, पहले तो मुझे लगा कि कोई जल ही छोड़ गया है, तो मैं स्विच ढूंढ रहा हूँ बंद करने को कि मुझे लाइट की जरूरत नहीं है, तो फिर पता नहीं वो स्टेप से वो बंद भी हो जाती है, मैंने कहा अच्छा ये चक्कर है, पूछा क्या चक्कर है, तो पता चला वो सेंसर वेंसर, तो लगता है आप देवलोक में आ गए हो, है ना लेकिन फर्क बस ये होता है कि आप सब बात बदल दोगे टेक्नोलॉजी से, इंसान का क्या करोगे वो तो असुर ही बैठा हुआ है वहां पर, जिसके घर में था वो देव गुण संपन्न व्यक्ति हैं, पर अदरवाइज टेक्नोलॉजिकल जगत है ऐसा जहां पे असुर ही बैठा हुआ है, ये सब न्यूक्लियर पावर उसके हैंड में है, तो ये और असुर के भी अंदर इस तरह की नॉलेज होती है ना, डार्क नॉलेज, शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, देखिए आप संजीवनी विद्या उन्हीं के पास थी, अगर वो आज के उसमें कहें तो वो बहुत बड़ा अस्पताल खोल सकते थे कि कोरोना से मर जाओ कोई बात नहीं, जिंदा मैं कर दूंगा, जितनी बार मरोगे मैं जिंदा कर दूंगा, मेरे पास संजीवनी विद्या है। अब उनके अस्पताल के बाहर लाइन लग जाती कि यार मरेंगे तो भी ये जिंदा कर देंगे, देवताओं ने जो बास में हॉस्पिटल खोला है वो तो कहेंगे एलिक्सर पियो, तुम काढ़ा पी के तुम्हारे अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन मर गए तो मर गए, हमारे पास उसका सलूशन नहीं है, वो पड़ोस वाला अस्पताल में है, तो लोग क्या कहते वहीं जाते, यही हो रहा है ना आयुर्वेद और एलोपैथी का कि ये काढ़ा पी के हमारा रेजिस्टेंस, अभी तो हमारे ऊपर जीने मरने की बात है तो हम जाएंगे तो इस तरह की चीज वो कहते हैं। वो बताता है कि मैं इफ गॉड इज एट वर्क हिज सीक्रेट्स आई हैव फाउंड बट स्टिल द कॉज ऑफ थिंग्स इज लेफ्ट इन डाउट्स, ऑल मैटर इज ए बुक आई हैव पेरूज्ड ओनली सम पेजेस नाउ आर लेफ्ट टू रीड, आई हैव सीन द वेज ऑफ लाइफ द पाथ्स ऑफ माइंड, आई हैव स्टडीड द मेथड्स ऑफ द एंट एंड एप एंड द बिहेवियर लर्नड ऑफ मैन एंड वर्म। तो बताते हैं कि सब कुछ मैंने सीख लिया है और मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान आप रखो अपने पास दिल के तसल्ली के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ सब कुछ। तो फिर जब मैं जानता हूँ सब कुछ तो भगवान कहते हैं चल तू तो अपने हिसाब से चल, टिल यू आर कन्फ्रंटेड विद द रियल चैलेंज ऑफ लाइफ। जब स्फिंक्स आता है और क्वेश्चन करती है, स्फिंक्स को आप बुद्ध नहीं बना सकते, स्फिंक्स क्या करती है सिंगनी, वो आपसे एक ही प्रश्न करती है तुम कौन हो, तो उस दिन आपने कहा मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, अच्छा ले अभी मार रही हूँ, नहीं नहीं रुक जाओ मैंने बहुत हजारों मरीजों को ठीक किया है, फिर तलवार उठाती है, सर पद्म भूषण पद्म विभूषण मिला है मुझे, अब तो आप छोड़ दो मुझे, आई डोंट केयर फॉर योर पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, सर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया था डिनर के लिए, वो तो खुद मैं अभी देख वहां पर मरा पड़ा हुआ है साइड में, She slays them and their mangled bodies lies upon the highways of eternity. लेकिन वहीं पर एक भारतवर्ष का छोटा सा पहुंच जाता है कोई अनपढ़ किसान गंवार, ये सब चले जा रहे हैं सिंगनी, सबको वन बाई वन, विद्वान हैं हम हार्वर्ड में हैं, हमने वो प्रोफेसर, हम पद्म भूषण हैं, हम विभूषण हैं, हम भारत रत्न हैं, हम अमेरिका रत्न हैं, सब को मार रही है। फिर एक मेरे इंडिया का इलिटरेट पीसेंट चला जाता है, सिंगनी पूछते कौन हो तुम, तो वो क्या कहता, कहता है माँ की संतान हो। तब सिंगनी मर जाती है, ये तो स्टोरी है ना। शीस लेट्स हिम पास, यू हैव रियलाइज्ड, एक ही चीज वो पूछती है। तो मडोना अगेन उसको इग्नोर करती है कि मैं जानता हूं, मेरा आप कार्ड देख लो, आइडेंटिटी कार्ड, विजिटिंग कार्ड नहीं चलता है वहां पर, बल्कि उससे और ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपकी रियल लाइफ को। नॉर्मल लाइफ में लोग मुखौटा पहनते हैं ना कि ये बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा इंसान होगा, आप फट से यू बाई दैट, और साथ में अगर सूट बूट पहना हुआ है और फिर अमेरिकन एक्सेंट से बात कर रहे हैं, तो आप ये समझते हो कि वो इंसान बड़ा स्पेशल होगा। और भारतवर्ष के वो गांव का एक आदमी जाकर के बड़े वो विनम्र अवस्था में पूछ रहा है आपको कि जरा हमको किताब, ठीक है तो लाइन में खड़ा हो जाओ वहां पर। ये हम लोगों की मानसिकता हो गई है, स्लेवरी ऑफ द वर्स्ट काइंड। लेकिन सिंगनी के द्वार पर आप उसको धोखा नहीं दे सकते हो, द स्फिंक्स दैट्स वेट्स फॉर दी बिसाइड द वे। तो सावित्री फिर इनको भी बताती हैं मैडोना ऑफ लाइट को, जिसके साथ हम लोग रुकेंगे, कहती हैं कि तुम मनुष्य को इंस्पिरेशन देती हो, अल्टीमेटली लाइट तुम्हें लिंक करेगी सोर्स से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर, उनको भी बताती हैं, बट नॉट बाई शावरिंग हेवन्स गोल्डन रेन अपॉन द इंटेलेक्ट्स हार्ड एंड रॉकी सॉइल। इंटेलेक्ट उसको मैं, आपको इंस्पिरेशन आ रही है, आपको बड़ा मजा आ रहा है कि मैंने कितनी किताबें लिख दी, कितने आर्टिकल लिख दिए, इससे आपकी पहचान नहीं होती है। तो इस प्रकार से वो जीवन मनुष्य जिएगा। इवन इफ दाउ रेन डाउन इंट्यूशंस रेज, द माइंड ऑफ मैन विल थिंक इट अर्थ्स ओन ग्लीम, हिज स्पिरिट बाय स्पिरिचुअल ईगो सिंक। सबसे भयानक चीज, क्यों, क्योंकि वाइटल ईगो, मेंटल ईगो, फिजिकल ईगो तो लोग हैं जो आपको बता देंगे, स्पिरिचुअल ईगो सब आपको महिमा मंडित करेंगे, हे भगवान आप ही तारणहार हो, और आपके मन में एक मिनट को भी आ गया मैं तारणहार हूं, तो वहीं से आपके गड्ढा शुरू हो जाता है। तो वो बता सचेत कर रहे हैं कि भाई स्पिरिचुअल ईगो सिंक, क्योंकि आपको इंट्यूशंस हो रही, इंस्पिरेशन हो रही है, तो यू विल थिंक यू आर ब्लेस्ड स्पेशली। तो सुनी होगी ना कहानी कैसेंड्रा का अभिशाप। कैसेंड्रा एक बड़ी विचित्र कैरेक्टर है, ग्रीक मिथोलॉजी की है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। कैसेंड्रा और एक मानवी है, और उसको अपोलो जो गॉड हैं लाइट के, रीजन, ऐसे ही इज द गॉड ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट, रीजन, बट ए हायर काइंड, इंट्यूशन, उसके वो देवता हैं। इंट्यूशन की स्पेसिफिकली तो एथनी है, लेकिन ये ब्रिलियंट है अपोलो, उन दोनों का प्रेम हो जाता है। तो अपोलो कैसेंड्रा से संबंध जोड़ना चाहते हैं, इट्स ए मिस्टिक स्टोरी, इसको आप मानवीय उसमें कि संबंध जोड़ना चाहते हैं, फिजिकल लेवल जैसे वो प्रेजेंट की जाती है, इसका डीपर सेंस है, यानी कि मैं तुम्हारे पूरे शरीर तक में इंट्यूशन को डाल दूंगा, उस प्रकाश को डाल दूंगा। तो कैसेंड्रा कहती हैं कि पहले तुम मुझे अपनी फोरसाइट की शक्ति दे दो। अपोलो प्रेम करते हैं, कहते हैं ले लो। तो कैसेंड्रा को जब वो शक्ति मिल जाती है तो भविष्य को देख सकती है। तो जब देख सकती भविष्य को तो कहती है अब मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है, यू गो योर वे। तो अपोलो उसको श्राप देते हैं, कहते हैं अब देवता का वरदान तो वापस नहीं जाएगा, तुम देखोगी भविष्य लेकिन तुम्हें कोई विश्वास नहीं करेगा। तो एक इस पर तुम एक बार एक वो भी आ रही थी एक स्टोरी के रूप में, एक पोयम के रूप में, कैसेंड्रा का अभिशाप। अब वो विचित्र अभिशाप है कि वो ट्रॉय में जब वार होने वाला है सब लोग बैठकर एसेस कर रहे हैं, कैसेंड्रा जो एकमात्र बहन है पेरिस और उसकी, कैसेंड्रा कहती है कि मैं देख रही हूं कि पूरा ट्रॉय जल रहा है, हेलेन यहां पर रहेगी तो विनाश होगा। आप रामायण में भी ऐसी कहानी आती है ना, कहती है, मैं देख रही हूं मेरी आंखों से, तू तो पागल है, तू देखती रहती है, तू जा अपने डॉक्टर से दवाई ले ले। कैसेंड्रा का अभिशाप। तो इवन इफ इंट्यूटिव रेस कम, तो मनुष्य उसको अपना समझेगा, और वो यही करती है, वो इगोइस्टिकली उसको, अब मेरे पास फोरसाइट आ गई, आई डोंट नीड द गॉड, मैं स्वयं एक देवी हूं। तो कैसेंड्रा का ये अभिशाप है स्पिरिचुअल ईगो, और इस सोल ड्रीम शट इन सेंटहुड्स ब्रिलियंट सेल. सेंट होना तो बहुत बड़ी बात है. शेरविंद कहते हैं आवर योगा इज नॉट टू क्रिएट सेंट सेजेस योगीज. अरे फिर बचा क्या? हाँ जो बचा है ना वही मैं क्रिएट कर रहा हूं. ना नाम दो तो अच्छा है. तो क्योंकि सुपरमैन भी बोलने से अच्छा और भी ज्यादा हम एक कैटेगरी ऊपर हो गए. सेंटहुड्स ब्रिलियंट शेल, ये भी एक संत हैं. आपने देखा है संतों के कितने क्या बोलते हैं लटके झटके, मतलब क्या वो ताम झाम होते हैं. एक बार एक दिल्ली आश्रम में आए थे तो वो नागा साधु, अब नागा साधु कैसे जाते हैं आप सब जानते हैं, जैन मुनि. तो वो अब आप फॉलो करिए तो फिर बाहर मत जाइए. बाहर जा रहे हैं तो ये तो मतलब फ्री शो इट्स नॉट हेल्दी, पर जा रहे हम अपने रिजिडली हम फॉलो कर रहे हैं अपना वो तरीका. तो अब सोचिए इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ अनदर काइंड. जहाँ कोई कहे हमारा तो ये तरीका है खाने का राक्षस कुल में कि हम तो मनुष्यों को ही खाते हैं. तो अब ये थोड़ी है कि आपका आप एक समाज भी एक चीज़ होती है. पर वो आए जब दिल्ली आश्रम तो पाँव नहीं रखेंगे जमीन के ऊपर. तो उनके डिसाइपल्स पत्ते लेके चल रहे थे, एक पत्ता बिछाया उस पर पाँव रखा. तो सुरेंद्रनाथ जौहर जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही. कहा वैसे तो आपके डिटैचमेंट की बड़ी सराहना करता हूँ लेकिन एक बात है बस कहनी पड़ेगी, आप अपने डिटैचमेंट से बहुत अटैच हो गए हो. सेंटहुड्स ब्रिलियंट शेल, हम ऐसे ही कपड़ा पहनेंगे, हम इस तरह से चलेंगे. इसको कहते हैं शो एंड शैम. बाहर से हम अपने व्यक्तित्व को कि भाई हम तो संत पुरुष हैं, हमने पिक्चर देखी भी तो चुपके से देखी, हम बात नहीं करेंगे इसकी क्योंकि हमें कोई ये ना समझ ले कि ये फिल्म भी देखते हैं. तो ये सारी चीजें जो हमारे जीवन में ये जुड़ी रहती हैं, शो एंड शैम, तो उसकी बात कर रहे हैं. वेयर ओनली ए ब्राइट शेडो ऑफ गॉड कैन कम. ये नहीं कि आपको इंट्यूशंस नहीं हो रही है लेकिन वो आपके अंदर एक अलग प्रकार का अहंकार क्रिएट कर रही है जिसके चलते यू मे फॉल. हिज हंगर फॉर द इटर्नल दाउ मस्ट नर्स एंड फिल हिज यर्निंग हार्ट विद हेवन्स fire and bring God down into his body and life. One day I will return his hand in mine. Last में वो उनको भी कहती हैं मैं अभी जा रही हूँ to find my soul. एक दिन मैं आऊँगी. तब इसमें क्या आधा तीनों प्रकृति के चेंज की बात है. And thou shalt see the face of the absolute. Then shall the holy marriage be achieved. Then shall the divine family be born. There shall be light and peace in all the worlds. अब ये लास्ट में जो ये तीनों त्रिगुणात्मक प्रकृति की मूल स्वरूप को जो बात कहती हैं सावित्री, इसके अंदर हमको सूत्र मिलता है जो शेरविन सिंथेसिस ऑफ योगा में और अन्य अन्य जगह विस्तार से बताते हैं. वो नेचर के भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं. तमोगुणी प्रकृति विल बिकम फुल ऑफ पीस, द पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ पीस, स्टिलनेस. रजोगुणी प्रकृति विल बिकम द पावर ऑफ चित तपस, तपशक्ति, कॉन्शियसनेस, जो शक्ति है हमारे अंदर वो. और सत्वगुणी प्रकृति विल बिकम द पावर ऑफ लाइट एंड जॉय. तो ये तीनों के अंदर रूपांतरण होगा और ये शेरविंद के योग में ना केवल ये संभव है लेकिन ऐसा होगा. बट फर्स्ट वी मस्ट फाइंड अवर सोल. तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसकी बात होगी. नमस्ते.